हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह आदित्य सुनैना के पुश्तैनी बंगले में उनके कमरे में था। सुबह के पता नहीं कितने बज रहे थे जब सुनैना की आंख खुली और उसे पता नहीं क्यों अपने सिर में हल्का दर्द हो रहा था। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें भी काफी चिपचिपा रही थीं, जिस वजह से पूरी आंखें एक बार में नहीं खुली। लेकिन हल्की सी आंखें खोलते ही उसने एक हाथ अपने आप पर रखा और उसी हाथ से आंख मलते हुए धीरे धीरे अपने आप को खोला तो उसे अपने साइड में ही बेड पर लेटा हुआ आदित्य नजर आया, जो अपने हाथ पर सिर टिक कर लेटा हुआ उसी की तरफ ही देख रहा था। गुड मॉर्निंग और हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू सोना। सुनैना को जगाते देखा तो आदित्य ने तुरंत ही मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग और एनिवर्सरी विश किया, लेकिन सुनैना ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे पिछली रात की सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से याद थीं। इसलिए उसने तुरंत ही आदित्य की तरफ से मुंह फेर लिया और तुरंत अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगी। लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर ही खींच लिया और उसके ऐसा करने से सुनैना उसके ऊपर ही आकर गिर गई और उसकी कमर और हाथ पकड़ते हुए उसे गिरने से बचा लिया। और इस वक्त सुनैना का चेहरा आदित्य के चेहरे के एकदम करीब है और सुनैना थोड़ी सी घबराई हुई है, इसलिए उसकी धड़कन बढ़ गई है और सांस भी तेज चल रही है। सुनैना अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, क्या कर रहे हो आदित्य, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम मुझे कभी भी कुछ नहीं बताते हो और सारी एनिवर्सरी पार्टी भी खराब हो गई कल की। नैना दी, स्वीटी किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाई, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम हो कि अब तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। आदित्य ने उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और कसकर पकड़ते हुए बोला, हाँ सोच तो रहा है, क्योंकि सोच रहा हूँ हमारी शादी की रात वाली फर्स्ट नाइट तो हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद की मॉर्निंग कैसी थी वो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, तो सोचा चलो इसे यादगार बनाते हैं, क्यों? आदित्य ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो फिर सुनैना ने भी और कोशिश नहीं की। आदित्य के ऊपर लेटे हुए सुनैना ने दूसरी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, याद भी कैसे होगा कुछ, शराब पीकर बेहोश तो पड़े थे तुम वहां बाथरूम में, और फर्स्ट नाइट को तो आग लग गई थी हमारे रूम में, ये तो याद होगा ना तुम्हें, या वो भी भूल गए? सुनैना की बात सुनकर आदित्य बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए एकदम चौंक कर बोला, क्या आग लग गई थी, लेकिन कैसे, और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? मेरा मतलब है याद है थोड़ा सा, धुंधला धुंधला सा, लेकिन बाकी ज्यादा डिटेल्स नहीं याद है। सुनैना फिर से उसी तरह नाराजगी से बोली, बोला ना कैसे याद होगा, इतनी ज्यादा नशे में जो थे तुम, कुछ भी याद नहीं होगा तुम्हें, लेकिन मुझे सब याद है, क्योंकि अभी एक साल ही हुआ है, कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हो गए, एक एक बात याद है मुझे। ये भी याद है कि कल रात वो लड़की जिसे तुमने छिपाकर रखा है इतने दिनों से, उसका बॉयफ्रेंड और जो कुछ हुआ ना, सब याद है मुझे। इसलिए छोड़ो तुम मुझे, तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम भी मुझसे बात मत करना, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलते हुए सुनैना ने आदित्य को पुश किया और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए उठकर बेड पर बैठ गई। आदित्य भी उसके साथ ही उठकर बैठ गया और मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार सोना, ये कैसी सजा दे रही हो तुम, और प्लीज मेरी बात तो सुनो, एक बार कम से कम एक्सप्लेन करने का ही मौका दो। और वैसे उस लड़की से याद आया, वो लड़की आखिर कहाँ चली गई, कल रात पार्टी के बाद से तो दिखी नहीं रही, वो रवि के साथ भी नहीं है। सुनैना ने बार बार अपनी बात में उस लड़की का जिक्र किया तो आदित्य को भी उसके बारे में ध्यान आया, क्योंकि कल रात इतना कुछ हो गया था, उसके बाद से उसे रश्मि का तो ध्यान ही नहीं रहा था इन सब के बीच, इसलिए ही उसने अचानक से उसका नाम ले लिया। लेकिन आदित्य ने इस तरह उस लड़की के बारे में फिर से सोते हुए बोला तो सुनैना का गुस्सा बढ़ गया और वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ाती हुई उठकर खड़ी होती हुई बोली, हाँ हाँ ठीक है, जो जाकर उस लड़की को ही ढूंढो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, वो और बाकी सारी दुनिया के लोग। और मुझे मत बताना कि महान बनकर तुम किस किस की हेल्प करते फिरते हो, किसको तुमने रवि के साथ, शिवानी के साथ और नदीम के साथ उनके घरों में छुपाकर रखवाया हुआ है। और वैसे बस चले तो कुछ लोगों को अपने घर भी ले आना और मेरी नज़र बचाकर स्वीटी के कमरे में या फिर गेस्ट रूम में या गीता दी के साथ रखवा देना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आखिर हूं ही कौन। इतना बोलकर सुनैना गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी और उसे आदित्य ने जल्दी इतने गुस्से में नहीं देखा है। आज पहली बार ही सुनैना उस पर इतना ज्यादा नाराज हुई है और शायद वजह भी काफी बड़ी है, जो कि आदित्य को अब रियलाइज हो रहा है। इसलिए आदित्य तुरंत ही उठकर उसके पीछे आया और उसने सुनैना का हाथ पकड़कर फिर से उसे रोक लिया और फिर उसे घूमकर अपनी तरफ किया और उसके दोनों कंधों पर अपना हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, आई एम सॉरी सोना, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। और इतना बोलकर आदित्य ने थोड़ा सा इमोशनल होते हुए सुनैना के कंधे पर अपना सिर टिका लिया। आदित्य जल्दी इस तरह से इमोशनल नहीं होता है, इसलिए उसे ऐसे देखकर सुनैना भी ज्यादा देर अपना गुस्सा बरकरार नहीं रख पाई और फिर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखते हुए बोली, सॉरी फॉर वॉट? क्या लगता है तुमने जो किया सही किया? और वैसे भी तुम फिर से अपनी गलती दोहराने वाले हो, तो इस सॉरी का कोई मतलब भी बनता है? सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य ने अपना सिर उठाकर तुरंत ही उसके चेहरे की तरफ देखा, जल्दी जल्दी अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, सॉरी फॉर माई ओवर थिंकिंग। मैं इतना सोचता हूँ हर पल ही तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में, और इसीलिए बस मैं नहीं चाहता था कि तुम भी इन सब में पढ़ो। तुम्हारा एग्जाम भी थे, इसके अलावा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने भी मना किया था कि तुम्हें किसी चीज को लेकर स्ट्रेस ना हो, और फिर मुझे लगा मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, तो बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और तुम्हें प्रोटेक्ट। आदित्य उसकी आंखों में देखा हुआ बहुत ही गिल्ट के साथ ये सारी बातें बोल ही रहा है, तभी सुनैना ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा सेफ प्लेस क्या है। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानता है सुनैना आगे क्या बोलने वाली है। और तभी सुनैना ने उसकी बाहें अपने कमर के चारों तरफ लपेट ली और उसके एकदम करीब आकर उसके गले लगाती हुई बोली, देखो कितनी सेफ और सिक्योर हूं मैं यहां पर, क्या अब भी तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत है? सुनैना की ये बातें सुनकर आदित्य ने भी उसे कसकर गले लगाते हुए उसके सिर के ऊपर चूमा और मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके सिर के ऊपर ही टिका लिया। दूसरी तरफ अनय और मनस्वी का घर।
वो बेड पर अकेली ही है, अनय वहां पर उसकी साइड में कहीं भी नहीं दिख रहा। और तभी नींद में मनस्वी ने अपना हाथ आगे पीछे करते हुए इधर उधर टच किया, जैसे कि वो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। और नींद में भी वो अनय को ही अपने आसपास चाहती है, इसलिए इधर उधर बेड पर हाथ फेरते हुए वो उसे ही ढूंढ रही है। लेकिन उसे अपने आसपास कंबल और तकिया के कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो फिर धीरे से उसने अपनी आँखें खोली और नींद में ही इधर उधर देखते हुए उसे ढूंढने लगी, और उसे थोड़ा धुंधला दिख रहा है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मनस्वी ने एकदम ही चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और अपने आप को कंबल से पूरा और अच्छी तरह से ढक लिया। ओह, उठ गई तुम? मुझे लगा अभी तक सो रही होगी। मैं तुम्हें ही जगाने आ रहा था, और ये कॉफ़ी पी लो। अपने हाथ में एक ट्रे पकड़े हुए अनय कमरे के दरवाजे से अंदर आता हुआ बोला, और उस ट्रे पर दो कॉफ़ी के बड़े से कप रखे हुए हैं। अनय को इस तरह से अपने लिए कॉफ़ी लेकर आते हुए देखकर मनस्वी को बहुत ही हैरानी हुई, और वो इस तरह हैरानी से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि उसे ऐसे VIP ट्रीटमेंट की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनय ने वो कप उसकी तरफ बढ़ाया। मनस्वी ने चुपचाप अनय के हाथ से वो कॉफ़ी मग ले लिया और उसे बेड के साइड पर रख दिया। अनय ने भी अपने हाथ में पड़ी हुई वो ट्रे बेड के दूसरे साइड पर रखी और अपना कप लेकर वहां से आगे जाने लगा। तभी पीछे से मनस्वी ने उसकी तरफ देखते हुए एकदम से कहा, अनय, डू यू लव मी? मनस्वी ने बहुत ही हिम्मत करके उससे ये सवाल किया है, और जवाब में उसे नहीं पता कि उसे क्या सुनने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि कल रात उनके मेकआउट के टाइम भी अनय ने उसके सामने कंसेशन नहीं किया था। हर एक बार भी उसे ये नहीं बोला था कि वो उसे प्यार करता है, और मनस्वी है कि उसके मुंह से ये सुनने के लिए मरी जा रही है। उसका ये सवाल सुनते ही वहां से आगे बढ़ता हुआ अनय अपनी ही जगह पर ठिठक कर रुक गया, और फिर उसने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद की और फिर पीछे मुड़कर मनस्वी की तरफ देखने लगा। मनस्वी को उसकी नज़रें खुद पर महसूस हुईं तो उसे पता नहीं क्यों थोड़ी सी शर्म आई, और वो अपने बाकी के खुले हुए शरीर को भी कंबल के अंदर करती हुई ढकने लगी, और उसने अपना हाथ भी अंदर कर लिया, जबकि पिछली रात वो बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी और वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में समा गए थे। लेकिन अभी वो उसकी ऐसी नज़रें खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ऐसा करते हुए उसने एक बार नज़र उठाकर फिर से अनय की तरफ देखा, तो उसकी तरफ आते हुए अनय भी उसकी तरफ ही देख रहा है, और जैसे ही उन दोनों की नज़रें मिली, मनस्वी इधर उधर देखने लगी, और तभी अनय जाकर उसके सामने ही बेड पर बैठ गया। थोड़ा सा आगे आते हुए उसने मनस्वी का हाथ पकड़ा और बोला, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता ये प्यार है या फिर क्या, लेकिन मैं अब तुम्हें ही अपना सब कुछ मान चुका हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई भी लड़की नहीं है, ना ही कभी रही और ना ही कभी होगी, और नहीं देख सकता मैं तुम्हें अंकित या किसी और के भी साथ। देखना तो दूर, मैं तुम दोनों को साथ में सोच भी नहीं सकता, और कल रात के बाद तो। इतना बोलते हुए वो रुक गया, क्योंकि मनस्वी बिना अपनी पलके झपकाकर उसकी तरफ देखती हुई बहुत ही ध्यान से उसकी ये बातें सुन रही है और मुस्कुरा रही है क्रमशः।